old yogi, Shilu Ben. And of course, Shilu Ben is right here with us. She's not an old yogi, but I have to tell you that I have personally known Sister Shilu for more than 30 years. I met her first in 1983 when I was in your position, sitting there going, what's she going to tell me? And she, in my mind, is the original teacher that I had here in India. So believe me, you are not going to be disappointed by her. And you know what? She speaks extremely good English. And I guess she must speak pretty good Hindi too. But she speaks extremely good English. And in fact, it was she who was chosen by the organization to, in a sense, be the voice, the English voice, of the Brahma Kumaris. So in my mind, when I think of the Brahma Kumaris, it's in Sister Shilu's voice. She's an extremely good teacher, and I ask her to come onto the stage right now to give us the lesson of Who Am I?
Om Shanti. Hindi mein suno, Hindi, English, mix, Hindi. But I can see some who don't understand English, Hindi. Is there anyone who will not understand Hindi? No, she's saying, brother, Nizar Bhai, she says, no Hindi, no Hindi. So English, little bit of Hindi, okay. Little bit of? They prefer Hindi, then.
Those who cannot understand Hindi, we would send somebody next to them who can understand.
Prajapita. ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस ज्ञान सरोवर परिसर में हमारे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी बहुत सुंदर शब्दों में निजार भाई ने फ्यूचर ऑफ पावर पर हम सबको अवगत कराया। शक्ति का भविष्य क्या होगा? वो हार्ड पावर नहीं होगा, पर सॉफ्ट पावर होगा। और सॉफ्ट पावर किसे हम कहते हैं? जो वैल्यूज पर आधारित हो। क्योंकि आज की दुनिया में कई प्रकार के पावर्स हैं, मनी पावर, मैन पावर, मशीन पावर, मटेरियल पावर, वेपन पावर, ये सब पावर्स हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एक तो ये सब विनाशी है, आज है कल नहीं रहेंगे, आज सुख दे रहे हैं कल दुख भी दे सकते हैं। लेकिन वो पावर, वो शक्ति जो अनादि है और अविनाशी है, जो थी, है और सदा रहेगी, क्योंकि अन्य शक्तियां तो समाप्त हो सकती है, तो वो शक्ति है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। और जहां आध्यात्मिक शक्ति की बात आती है, उसको हम समझेंगे आध्यात्म। ये दो शब्दों से बना हुआ शब्द है, आत्मा का अध्ययन, यही आध्यात्म है, जिसमें आत्मा का अध्ययन होता है, खुद का अध्ययन होता है, खुद को समझा जाता है, खुद में परिवर्तन लाया जाता है, खुद में शक्ति भरी जाती है। और जहां मैंने खुद को पहचान लिया तो उस सत्य परमात्मा को पहचानना मुश्किल नहीं है, जिसको ही कहा गया सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। और जब सेल्फ को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, तो फिर मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसको समझना होता है, जिसको हम कहते हैं कर्म की गति को समझना। ये भी आध्यात्मिकता का ही विषय है। और जहां कर्म की गति को समझा तो फिर आगे कदम आता है, अभी मुझे क्या करना है, तो समय को भी पहचानना है। तो खुद को पहचानो, परमात्मा को पहचानो, कर्म को पहचानो और समय को पहचानो। और ये पहचान अगर हमें मिल गई तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। और उस पहचान के आधार से वो शक्ति स्वयं में भर ली तो यही आध्यात्मिक शक्ति है। और इसी से ही हम सचमुच सशक्त बन सकते हैं। तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन, मैं कौन हूं, ये कितना बड़ा प्रश्न है जो सदियों से चलता आ रहा है। क्या हम नहीं जानते खुद को? तो फिर ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी ये प्रश्न किया, खुद को जानो, नो दाई सेल्फ। तो क्या हूं मैं? अधिकतर जो आज हम मैं की व्याख्या देते हैं उसमें दो प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज है। एक जो हम इंसान के आगे व्यक्त करते हैं और दूसरा जो हम भगवान के आगे व्यक्त करते हैं। दुनिया के आगे हम क्या व्यक्त करते हैं? मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं होशियार हूं, मैं सुंदर हूं, मैं जज हूं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अर्थात जो सांसारिक उपलब्धियां हैं उनका घमंड रख करके हम वो वर्णन करते हैं। ये है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। पर दूसरी ओर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हम ईश्वर के आगे व्यक्त करते हैं, और ईश्वर के आगे क्या कहते हैं खुद के बारे में? मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं दास हूं, मैं कपटी हूं, मैं गंदा हूं, मैं बंदा हूं, मैं चरणों की धूल हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं निर्बल हूं। जितने भी हीन शब्द डिक्शनरी में है वो सब अपने लिए वर्णन करते हैं। तो देखिए, एक ओर एकदम हीनता और दूसरी ओर एकदम अभिमान, ये दोनों ही अज्ञान है। क्योंकि ये दोनों ही अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। ज्ञान हम ईश्वर से मांगते हैं जो सत्य है, इसीलिए परमात्मा को सत्य कहा गया है। परमात्मा को ही प्रार्थना में कहा जाता असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे वो ज्ञान दो, वो सत्य ज्ञान, जिससे मेरा अंधकार मिटे, मुझे अमृतत्व का अनुभव हो। तो वो कौन सा ज्ञान? इसको ही कहते हैं खुद का ज्ञान। तो मैं कौन हूं, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटीज अज्ञान है। तो न मैं सेठ साहूकार आदि आदि हूं और न ही मैं हीन नीच पापी हूं, क्योंकि ईश्वर के आगे तो हम भल अपने आप को नीच पापी कहते हैं, लेकिन फिर साथ में ये भी कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जिसके माता पिता इतने ऊंचे तो बच्चे कैसे होने चाहिए। किसका पिता राजा हो तो बेटा राजकुमार होगा। तो परमात्मा हमारा पिता और हम उनके बच्चे, तो हम कैसे होने चाहिए, उन जैसे होने चाहिए। लेकिन जब ये कहते उन जैसे होने चाहिए तो फिर कई समस्या, तो हम ही भगवान है, हम ही भगवान है, ये भी एक अज्ञान है। क्योंकि भगवान कभी नीच पापी बनता ही नहीं है, वो तो सदा ही ऊंचे थे ऊंचा है। पर हम ऊंच थे फिर नीच बने, फिर उस परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके ऊंच बनते हैं, पर वो तो ऊंचे थे ऊंचा है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो मैं कौन हूं, मैंने किसी युवक से पूछा आप कौन हैं, तो बड़ा ही विचित्र जवाब दिया उसने। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, एक और चौथा आंसर, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने कहा कुछ तो हो, तभी तो आप कह रहे हो, अगर कुछ भी ना होते तो कहता भी नहीं कि मैं कुछ नहीं हूं। क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में था, बहुत डिप्रेशन में। उनके माता पिता ने मुझे कहा प्लीज आप इनको कुछ ऐसे समझाएं। अब तो मैंने पहला ही प्रश्न उनसे यही कहा किया आप कौन हैं। तो जब कहा मैं कुछ नहीं हूं, अब ऐसे व्यक्ति के आगे तो भविष्य भी अंधकारमय है, क्योंकि है ही नहीं कुछ। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ये भी एक अज्ञान है। क्यों नहीं हूं, मैं बहुत कुछ हूं। इसलिए मैं कौन हूं एक पहेली बन चुकी है। अब उस पहेली को सुलझाए कौन, परमात्मा ही सुलझा सकते हैं। पिता ही अपने बच्चे की पहचान दे सकते हैं। जैसे बच्चा अगर बचपन से गुम हो जाए, उस बच्चे को क्या पता मैं किसका बच्चा हूं। पिता ही उसे ढूंढ निकालता है, पिता ही उसे उनकी पहचान देता है। तो हम आत्माएं भटक गए इस भूल भुलैये संसार में और खुद को देह समझने लगे। जब हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन पार्ट तो ये फिजिकल बॉडी है, लेकिन बीइंग पार्ट वो क्या है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तो हार्डवेयर तो मोटी चीज है, पर वो सॉफ्टवेयर, तो मैं क्या वो हार्डवेयर हूं या सॉफ्टवेयर हूं। क्योंकि हार्डवेयर कौन सा होगा जिसको हार्ड, जिसे हार्ड पावर बना। हार्डवेयर किसको हम कहेंगे, लोग समझते हैं यू आर व्हाट यू ईट, ये हार्डवेयर है, शरीर आपका उससे अनुसार बनेगा। यू आर व्हाट यू वेयर, आप जो पहनेंगे उस अनुसार आपकी पर्सनालिटी बनेगी। यू आर व्हाट यू डू, आप जो करेंगे उससे आपका आपका स्थान बनेगा, पोजीशन बनेगी। बट ये सब विनाशी है, क्योंकि आज कुछ हम पहन रहे हैं, कल कुछ और पहनेंगे, घर में कुछ और पहनेंगे, दफ्तर में कुछ और पहनेंगे। तो ये तो सब परिवर्तनशील है, लेकिन यू आर व्हाट यू थिंक, यू आर व्हाट यू फील, यू आर व्हाट यू एक्सपीरियंस, यू आर व्हाट यू विजुअलाइज। सो थिंकिंग, फीलिंग, विजुअलाइजिंग, एक्सपीरियंसिंग, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्ट पार्ट है। एंड व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम, आप जो सोचेंगे वो ही अनुभव करेंगे, ये सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर पोर्टेबल है, हम पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर ले जाते हैं अपना, वो कहीं भी किसी भी हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर में खोल सकेंगे। इसलिए शरीर तो नश्वर है, वो यहीं रह जाएगा, पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्वों में मिल जाएगा। लेकिन मैं इस शरीर से पहले भी थी, इस शरीर के बाद भी रहूंगी, वो मैं हूं। क्योंकि शरीर के लिए क्या कहते हैं, मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। पर आत्मा के लिए क्या कहते हैं, भगवान के घर से आई है, भगवान के घर जाना है। शरीर वहीं पड़ा हुआ है, कहेंगे फलाने की देह शांत हो गई, देह तो शांत हो गई लेकिन फिर भी उसकी आत्मा की शांति के लिए कामना करेंगे, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। शरीर को शांति नहीं चाहिए, शरीर की शांति माना मृत्यु, मृत्यु नहीं चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। और मरने के बाद की भी शांति नहीं चाहिए। कई समझते हैं जीवन में तो शायद शांति नहीं मिलेगी, पर मरने के बाद शायद शांति मिले, इसीलिए मरने के बाद मुझे शांति मिलेगी। लेकिन एक कठोर सत्य है कि जिसने जीवन में शांति का अनुभव नहीं किया, मरने के बाद भी नहीं करेगा। ये कठोर सत्य है। क्यों? क्योंकि अशांति के संस्कार आत्मा ले जाती है, और अगर इस जीवन में भी अशांति के संस्कार रहे तो जहां भी वो आत्मा जाएगी, जिस भी जन्म में जाएगी, जो भी देह लेगी, वहां भी वो अशांति का ही अनुभव करेगी। इसलिए कहा जाता है शांति है तो अभी है, अभी नहीं है तो कभी नहीं है। सुख है तो अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हैप्पीनेस इज नॉट एट द एंड ऑफ द जर्नी, इट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। इसलिए अगर मैं गुणों की बात करती हूं, वो अभी है, अभी नहीं है तो कभी नहीं है। क्योंकि ये गुण, ये वैल्यूज, ये मूल्य, ये शरीर की चीज नहीं है, ये आत्मा की चीज है। इसलिए जब हम इन गुणों की इच्छा रखते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये मेरे पास ही है, क्योंकि आत्मा के अंदर ये सदा ही निहित है, ये कोई बाहर से नहीं आती। तो जैसे ही मैंने यह चिंतन किया कि मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर के भीतर एक चैतन्य शक्ति हूं और अविनाशी हूं, अजर हूं, अमर हूं, सदा थी और सदा रहूंगी, तो सबसे पहले एक सुंदर अनुभूति हम करते हैं, और वो है मृत्यु के भय पर विजय। आज सबसे बड़ा भय अगर संसार में है तो वह है मृत्यु का भय। इनसे और बड़ा भय कोई है ही नहीं, बाकी तो सब छोटे छोटे भय है। परंतु जैसे ही हमने अपने आप को पहचाना कि मैं वो अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं, तो मृत्यु का भय तो खत्म ही हो जाता है। और कई लोग जो मरना चाहते हैं, ये भी कितना बड़ा ज्ञान है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम मर जाएंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो तो शरीर ही खत्म होगा, वो जो कर्मों का हिसाब किताब है वो तो आत्मा के साथ जाएगा, चाहे इस शरीर में नहीं तो दूसरे शरीर में। तो इसीलिए खत्म तो ऐसे तो होगा ही नहीं, चाहे इस शरीर से हम भले मुक्त क्यों ना हो जाएं। इसलिए ये कठोर सत्य को भी हमें समझना होगा, और साथ साथ इसको सहज करने के लिए हमें ये समझना होगा कि शांति, सुख, प्रेम, खुशी, ये जो हमारा सॉफ्ट पार्ट है, वो मेरे पास ही है, मुझे कहीं भी इसको ढूंढने के लिए जाना नहीं है। और जैसे ही हमने ये समझ लिया तो हम इनसाइड आउट अपनी जर्नी आरंभ करते हैं, नॉट आउटसाइड इन। सुख शांति बाहर से नहीं लेना है, अंदर से बाहर व्यक्त करना है, वो मेरे पास ही है। तो इसलिए मैं कौन हूं, ये पहेली कौन सुलझाए? परमात्मा ही हम आत्माओं की पहेली ये सुलझाते हैं कि अपने आप को पहचानो, आप इस देह के भीतर वो अजर अमर अविनाशी शक्ति हो। और जैसे ही हमने ये समझ लिया कि मैं वो अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं, तो केवल मैं ही नहीं हूं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, हम सब हैं। और जब हम सब हैं तो हमारे बीच में एक बहुत सुंदर एक कॉमन थिंग है, और अगर उसको हमने देखा तो आपस में कितना प्यार उत्पन्न होगा। आज अगर किसी को कहा जाए कि आप जैसी शक्ल वाला एक व्यक्ति मैंने फलाने जगह भी देखा है, बिल्कुल आप जैसी शक्ल है, बिल्कुल आप जैसे 100% बिल्कुल, आपकी क्या इच्छा होगी, क्या इच्छा होगी, होगी ना, होगी कि नहीं होगी कि उस, अरे यार मेरे जैसी, अच्छा जरूर मैं उसको देखना चाहूंगा। और अगर ये स्पिरिचुअलिटी में लागू हो कि जैसे मैं हूं वैसे आप भी हैं, मैं एक आत्मा हूं आप भी एक आत्मा हो, क्योंकि जहां देह की बात आती है वहां तो बहुत अंतर है, ऊपर से नीचे जैसे हम देखेंगे कितना अंतर पता चलेगा हरे का। लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि में एक आत्मिक दृष्टि हो जाती है तो दृष्टि और वृत्ति और स्मृति ये सब बदल जाते हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं। और जैसे ही मैंने ये निश्चय किया, ये समझ लिया कि मैं भी आत्मा हूं आप भी, तो आत्मा के जो मूल गुण हैं वो भी सब समान हैं। मैं भी एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, आप भी शांत स्वरूप आत्मा हैं। इसलिए सबसे पहले आपसे कहलवाया ओम शांति, और दादी जी आपके सामने आएंगे तो 3 बार जरूर कहलवाएंगे। तो 3 बार हम कहलवाते हैं, उसमें भी राज है कि मैं शांत स्वरूप हूं, आप भी शांत स्वरूप हो। तो हमने कहा, आपने भी कहा, तो एक तो ओम शांति, क्योंकि ओम शब्द में 3 अक्षर हैं, अ उ और म, अ उ म यानी वही मैं। तो वही मैं कौन, वही मैं जो शांत स्वरूप हूं। परंतु इतने तक ही नहीं, वो शांति मेरी सदा कायम रहे, वो अनुभूति हर वक्त होती रहे, तो फिर दूसरी भी शांति है कि मैं आत्मा उस शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। मेरा हम सबका पिता भी एक ही है, हम सब आत्माएं हैं, तो हमारा पिता एक है, हम सब उनके बच्चे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत की बहुत ऊंची धारणा है। सारा विश्व एक परिवार है, क्योंकि एक पिता के हम बच्चे हैं, और वो शांति का सागर है। ये दूसरी बार शांति, ओम शांति। फिर तीसरी बार का भी अर्थ है ओम शांति शांति शांति, तीसरी बार, अर्थात जिस धाम से मैं आत्मा आई हूं वो शांति का धाम है। क्योंकि ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, हम यही मानते हैं कि हम 2 दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर जाना है। और इस संसार को एक केवल सराय या गेस्ट हाउस ही नहीं माना, पर एक रंगमंच भी माना है। शेक्सपियर ने कहा, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो एक्टर जिस घर से आता है उस घर को भूलता नहीं है, मंच पर उसका जितना लिमिटेड पार्ट है या जितना भी पार्ट है उसको पता है पार्ट बजाते समय भी कि ये मंच मेरा घर नहीं है, ये सब जो मंच की चीजें हैं वो मेरी चीजें नहीं है। यहां तक कि जो मंच पर मुझे पार्ट मिला है उसके लिए जो मैंने ये ड्रेस पहनी है ये भी मेरा नहीं है, ये मंच का ही है। मुझे तो वापस अपने ही जो मैं वस्त्र पहन के आया था उसी में मुझे जाना, ये तो यहीं छोड़ना है। इसलिए ये वस्त्र भी मेरा नहीं है, ये स्थान भी मेरा नहीं है, और साथ साथ जितने भी ये मेरे सगे संबंधी इस मंच पर बने या रिश्ते नाते बने, ये भी मेरे नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना पार्ट तो बजा रहे हैं, इनको भी अपने घर जाना है। लेकिन अंतर क्या है, वो तो अपने अपने घर जाएंगे मंच पर पाठ पूरा करके। यहाँ घर भी एक ही है, हम सबका घर भी एक ही है, एक ही घर से सब आए हैं, एक जैसा ही स्वरूप है, एक ज्योति, आत्मा एक ज्योति है, एक ही घर के वासी हैं और एक ही पिता के बच्चे हैं। ये है स्पिरिचुअल पावर, ये है आध्यात्मिक शक्ति, जिसके आधार से हर एक के प्रति एक इतनी सुंदर भावना जागृत होती है कि मेरा ही भाई है, और जैसा मेरा ही असली स्वभाव है इसका भी वैसा ही है। और क्या है मेरा असली स्वभाव, जो हम सब जीवन में चाहते हैं, क्रोध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, नफरत नहीं चाहते, प्रेम चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, सुख खुशी चाहते हैं। तो ये चाहना क्यों है, ये इसलिए चाहना है क्योंकि यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो मैं कौन हूं, मैं वही हूं जो मैं अपने भीतर में चाहती हूं। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर में झांको, अंदर में मिलेगा। किसके अंदर, क्या शरीर के अंदर शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा? क्योंकि शरीर तो एक नश्वर चीज है, तो शांति शरीर के भीतर जाने में नहीं मिलेगी, उसमें तो हड्डियां, पसलियां और रक्त और पस, पता नहीं दुनिया भर का किचरा जो भी है, चले भले कितना भी सुंदर इनका ढांचा हो, लेकिन शांति प्रेम सुख कहां मिलेगा? अवश्य वो आत्मा की चीज है, इसीलिए इसको स्पिरिचुअल पावर कहा। पर कैसी बड़ी विडंबना कि जो चीज अंदर है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कैसी बड़ी विडंबना। विडंबना ही तो है, आपकी जेब में आपकी चाबियां हो, गाड़ी की चाबियां हैं, अब आप गाड़ी में कैसे जाएंगे चाबियों बिना, तो सारा घर टटोल दो, मेरी चाबियां कहां है, मेरी चाबियां कहां है, लेकिन जेब में हाथ डाला ही नहीं। कई बार होता है, एक बार तो किसी के हाथ में पेन थी, पेन उसके, अब पेन हाथ में है और कहा मेरी पेन कहां है, मेरी पेन कहां है, मेरी पेन, अरे भाई तो आपके हाथ में कौन सी, अरे मैं तो भूल ही गया। इतने एब्सेंट माइंडेड भी हो जाते हैं स्थूल चीजों के लिए ही, तो ये तो बड़ी सूक्ष्म चीज है। तो इसीलिए जो चीज मेरे पास है और मैं बाहर ढूंढ रही हूं कैसे मिलेगी, इसीलिए कहा जाता है अंदर जाओ। लेकिन क्यों नहीं अंदर जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि तीन इसके कारण है। पहला तो कारण है कि कैसे जाएं वही पता नहीं, क्योंकि खुद को बड़ा एक्सटर्नल रूप में देख रहे हैं। लेकिन दो और बड़े कारण हैं, अगर अंदर जाते भी हैं ना, तो दो बड़े कारण हैं जिस कारण डर लगता अंदर जाने में। एक तो अंदर खालीपन है, खाली खोखलापन, बाहर का ये शो आडंबर है लेकिन लगता है जैसे कुछ नहीं है। कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि आपके पास जीवन में क्या कमी है, तो कहते कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ है। तो फिर आप संतुष्ट हो? कहते नहीं। फिर क्यों नहीं संतुष्ट हो, अगर सब कुछ है तो कहते बस शांति चाहिए शांति चाहिए, सब कुछ है पर शांति चाहिए, तो माना जो कुछ है उसमें शांति नहीं है ना, क्योंकि अंदर खोखलापन है, खाली है। इसलिए जीवन में सब कुछ होते हुए भी निराशा अनुभव होती है, इसलिए अंदर झांकने में भी लगता है खाली है, क्या अंदर जाना। पर दूसरा भी, तीसरा एक कारण है, एक तो बता इतना फिजिकल अंदर जाएं कैसे यही पता नहीं, दूसरा खालीपन है, इसलिए खाली है तो डर लगता है, और तीसरा जो इतना बड़ा कारण है कि इतना अंदर में कचरा भरा पड़ा है, इतना कचरा भरा पड़ा है तो अंदर जाने में डर लगता है। जैसे आपने कबर्ड में बहुत कुछ घुस के डाल दिया हो, इतना भर दिया हो और एकदम दबा करके आपने दरवाजा बंद कर दिया कबर्ड का, अब आपको खोलना है तो कई बार डर लगता है, अगर खोलूंगा ना सारा कचरा बाहर निकल आएगा और जो चीज मुझे चाहिए वो भी इसी में ही है, पर मैं कहां ढूंढूंगा उसे इतनी सब चीजों के बीच में, इसीलिए वो चीज भी नहीं मिलती तो खोलते भी नहीं, डर भी लगता है कि फिर टाइम वेस्ट होगा, सारा उठाना पड़ेगा, चलो छोड़ ही दो। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, अंदर जाना ही नहीं चाहते, इसलिए भी डर लगता है कि पता नहीं क्या क्या निकल आएगा, और सब कचरा निकल आएगा, नेगेटिविटी निकल आएगी, सब दुख अशांति यही सब अंदर से निकल आएगा। परंतु अंदर झांक कर देखना माना खुद के असली स्वरूप को पहचानना कि मैं अपने असली स्वरूप में तो अति शुद्ध हूं। हमने सफेद वस्त्र पहने हैं तो सफेद वस्त्रों पर जरा भी दाग लगता है बहुत बुरा लगता है, सब वही पॉइंट आउट करेंगे सफेद वस्त्र पर बहन जी यहां दाग है, इतना सफेद है वो नहीं देखेंगे, वो दाग ही दिखाई देगा, काले पर तो पता ही नहीं चलता, पर सफेद पर बहुत ध्यान देना पड़ता है और वही नोटिस में आएगा। तो क्यों नोटिस में आता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा अपने मूल स्वभाव में अति शुद्ध है। इसलिए जैसे ही मन के अंदर कुछ ऐसा बुरा विचार, गलत विचार कुछ भी आया, तुरंत मन खाता है, ये मन खाना ये ही निशानी है कि अंतर है बड़ा शुद्ध, लेकिन हमने उस अंतर के शुद्धि को पहचाना नहीं है। इसीलिए कहा खुद को पहचानो कि मैं वास्तव में बहुत शुद्ध हूं, बहुत पवित्र हूं, और जैसे ही मैंने अपने अंदर में ये महसूस किया मैं अति शुद्ध हूं, तो शुद्ध हूं एक अवेयरनेस है, पर वो शुद्धि अंदर में सोई हुई है, उसको जगाना है। जैसे कोई बलशाली व्यक्ति सोया है तो उसकी शक्ति भी सोई होती है, उसी समय तो सोई हुई है, क्योंकि कितना भी बलशाली है, रेसलर है, मसल मैन है, परंतु सोया है, गहरी नींद में है, तो उसकी शक्ति भी उस समय तो सोई हुई होती है ना, वो अनअवेयर है। लेकिन जैसे ही वो जागता है उसको महसूस होता है कि मैं शक्तिशाली हूं। तो इसीलिए कहा अवेकनिंग, आपके अंदर जो वो पवित्रता की शक्ति है वो सोई हुई है कहीं, अब उसको जगाओ। और कैसे जगाएंगे, चिंतन से। इसीलिए का एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर ये मन में हम सोचते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो शांति आपको बाहर से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो आपकी ही है, आपके पास ही है। और ये भी एक बहुत गहरा राज है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत अशांत हूं, तो शांति से आप कोसों दूर हैं। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकती, ये गारंटीड है। भगवान भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपने ठान लिया है मैं तो बहुत अशांत हूँ। और अगर इसके विपरीत आपने ये महसूस किया, ये आप संकल्प करते हो कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकती। ये भी एक चैलेंज है, नहीं कर सकती। भले शरीर छूट जाए लेकिन आपकी शांति कोई नहीं ले सकता है। आपका धन ले लेगा, आपका कुछ भी ले लेगा, पर आपकी चीज शांति वो आपकी कभी नहीं ले सकता। वो आपकी अपनी निजी चीज है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। अपना स्वभाव अपने पास ही रहता है, कोई नहीं ले सकता है। कैसे, एक जैसे पानी का मिसाल है, पानी जल का स्वभाव शीतल है, शीतलता है। अब उसको चाहे कितना भी गर्म किया जाए, गर्म हो जाएगा, अग्नि के प्रभाव से गर्म हो जाएगा, पर ज्यों ही अग्नि दूर हुई वो वापस शीतल हो जाएगा, अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो है ही शांति। इसीलिए का अंदर जाओ, क्योंकि आत्मा अपने आप को पहचाने, मन को, मन का वास्तविक स्वरूप तो शांत है। पर आज हमने क्या समझ लिया, मन तो है ही चंचल, मन तो है ही पापी, मन तो दुष्ट है, मन 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 के लिए ही बहुत कुछ कह दिया। पर मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, इट इज योर ग्रेटेस्ट ह्यूमन रिसोर्स। इसीलिए कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। पर मन को जीतने का मतलब मन को मारना नहीं, मन को मोड़ना, मन में वो श्रेष्ठ विचार लाना। मन के ऊपर बुद्धि है, ये आत्मा की शक्ति है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये आत्मा की शक्ति है। फिर कर्म करने की शक्ति, फिर कर्म को रिटेन करने की शक्ति, ये संस्कार, ये आत्मा की शक्ति है। क्योंकि वो कर्म ही आत्मा अपने साथ ले जाएगी संस्कार के रूप में। इसलिए मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां आत्मा की है। बाकी इंद्रियां, ये जो पंच इंद्रियां हैं, उनकी जो शक्ति है वो शरीर की शक्ति है, देखना, सुनना, अनुस्पर्श करना। तो ये इंद्रियों का आकर्षण वास्तव में आज इतना प्रभावी हो गया है कि आत्मा की शक्ति को दबा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने आप को पहचानें। ये इंद्रियां आज मालिक हो गई है, जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के पंच रस मन को अपनी ओर खींच रहे हैं, और मन इनका गुलाम बन करके वो ही सोच रहा है। मन के ऊपर बुद्धि है, लेकिन बुद्धि भी मन के अधीन हो गई है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्योंकि मन के वश हो गया, मन इंद्रियों के वश हो गया। वास्तव में कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। समझ ये बुद्धि, ये मन के ऊपर है। मन तो दो वकीलों की तरह है और बुद्धि उसकी जज है। कर्म थर्ड स्टेज है, पहले सोचो, फिर समझो, फिर करो। लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, ईगो आता, अभिमान आता है, तो पहला स्टेप कर्म का कर लेते विदाउट थिंकिंग। और कर्म करने के बाद फिर समझ आती है तो गलत किया, और गलत किया ये बुद्धि में ने समझा, फिर मन में आता अभी क्या करूं। और होना चाहिए अभी क्या करना है पहले सोचना, फिर इसका क्या परिणाम होगा जो करूंगा वो सोचना, फिर उसके बाद करना। इट इज द थर्ड स्टेप, एक्शन शुड बी थर्ड स्टेप। लेकिन हम एक्सटेम्पो विदाउट थिंकिंग कर लेते हैं, उल्टी गाड़ी चलते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो यही हमें सिखाया जाता है यहां कि अपने आप को पहचानो, आप वो आत्मा हो जो पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये सात मूल गुण है। ज्ञान, ज्ञान भी अंदर से आता है, जो बाहर से आता है वो इन्फॉर्मेशन है, वो सूचना है, लेकिन जो अंदर से आता है वो शक्ति रूप में, वो ज्ञान है। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये परम आनंद, आत्मानंद, ये अंदर की चीज है, इंद्रियों का नहीं। और जब ये छह है तो शक्ति, यही स्पिरिचुअल पावर है, यही ट्रू एम्पावरमेंट है। और ये सात मूल गुण जो आत्मा की सच्ची चेतनता है, उसको समझना माना खुद को समझना। अब इसी स्थिति में हम बैठेंगे और अनुभव करेंगे अपने भीतर को, अपने आप को पहचानेंगे और उस स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो चलिए अपने भीतर में चलिए, एक अंतर की यात्रा करेंगे, इस देह से न्यारे बनेंगे। Worry